Pocket Mantra. Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you can call us on the numbers, and the numbers are 2331-4444, 2371-7117 and 2371-7106. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra ke saath hum hazir hain. Roz ki tarah hum aarthik aur vyapari khabrein lekar aapke paas aayenge aur aaj shanivar hai aur har shanivar ki tarah hum aapke prashnon ko bhi seedhe karyakram mein shamil karenge. Shrotaon, aap humse seedhe sawal pooch sakte hain. Hamare number hain 2331-4444 और 2371-7117 और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.
और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग.
थैंक यू अमरीश. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस क्लोज वीक विद लॉसेस ऑफ ओवर 0.5%. Major U.S. stock indices display mixed performance this week, and global crude oil prices log weekly decline of more than 4%.
Benchmark Gharelu Equity Index is saptah aadhe pratishat se adhik nuksan ke saath band hue. अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजारों में इस सप्ताह मिला जुला रुख रहा और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में 4% से अधिक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई.
Well, before we move ahead, here's a special announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और आज की पहली खबर, बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी इस सप्ताह आधे प्रतिशत से अधिक नुकसान के साथ बंद हुए. शुरुआती सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर पर लगातार मुनाफा वसूली के चलते बाजार नीचे चले गए, जिसने पिछले दो ट्रेडिंग सत्र में देर से हुई रिकवरी को बेअसर कर दिया. लगातार विदेशी फंड के बाहर जाने, रुपए में कमजोरी और अमेरिका भारत के बीच व्यापार बातचीत को लेकर अनिश्चितता के चलते इंडेक्स ने हफ्ते की शुरुआत धीमी गति से की. जापानी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और इस महीने के आखिर में बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदों से ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट और बढ़ गया. हालांकि अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा के बाद उम्मीद जगी और लिक्विडिटी की चिंताएं कम हुई. साथ ही भविष्य में मौद्रिक सरलीकरण को लेकर भी आशा का माहौल बना. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 शेयर वाला सेंसेक्स 444 अंक गिरकर 85,268 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139 अंक गिरकर 26,047 पर बंद हुआ। इस बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी नकारात्मक रुझान दिखा। मिड कैप इंडेक्स 0.3% गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट 0.4% की रही। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस हफ्ते 43 पैसे कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 90.42 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
एंड नाउ फ्रेंड्स, वी जॉइंड बाय केशव कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। जी केशव जी, सवाल पूछिए।
हेलो, नमस्कार जी।
नमस्कार जी।
सर नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ।
हाँ जी।
कि जैसे हमने अपना एफडी बनवाया था, हमारे पास दो बैंक है, एक सरकारी एक प्राइवेट। हमने सरकारी बैंक से अपना फंड उठा के प्राइवेट में डाला था, तो सरकारी में तो हमने GH15 फॉर्म भर रखा था, पर उसमें नहीं भर रखा था प्राइवेट में। तो अभी हमने एक साल की एफडी तोड़ के कुछ 10-15 दिन के लिए बनी थी, पर हमने उसको दो साल के लिए बनाने की कोशिश करी है, तो उसमें क्या हुआ हमारा आरटीआई क्या बोलते हैं बोलता था टैक्स कट गया। वो बोलते हैं कि अगर इसको आपको रिटर्न लेना है तो आपको आरटीआई भरनी पड़ेगी, टीडीएस कटा है। तो अगर हम एक बार आरटीआई भर देते हैं तो क्या हमें दोबारा फिर हर साल ये भरनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार भरने के बाद कंटिन्यू करनी पड़ती है क्या?
बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने एक बार दाखिल किया है तो आपको हर साल दाखिल करना होगा, और आपके पास अगर इनकम नहीं है, आय नहीं है जो कि टैक्स के दायरे में आता है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल इनकम टैक्स रिटर्न प्रीफिल्ड आने लगे हैं, यानी कि आपने जो भी जानकारी विभाग के पास है वो सारी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाती है, तो उसकी चिंता ना करें, बहुत ही आसान हो चुका है और भरें। और दूसरी बात कि अगर आप कहीं भी फिक्स्ड डिपॉजिट करा रहे हैं और आप यदि सीनियर सिटीजन हैं और या फिर आपकी उम्र 60 साल से कम उम्र की है और टैक्स के दायरे में आप नहीं आते हैं, तो फॉर्म 15G या 15H जरूर दाखिल करें।
और इंदौर से हमारे श्रोता राकेश लाइन पे हैं। राकेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं?
सर मेरे दो सवाल हैं।
जी
हेलो।
जी जी, सवाल पूछिए।
पहला सवाल ऐसा है, ये IPEF में से जो ये आ जाता है कि आपका अप्रूव हो गया है, तो अप्रूव होने के बाद काफी टाइम से मेरे शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं आ गए हैं, एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि ये प्रोग्राम आप रिपीट क्यों नहीं करते नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि मैं तो एक्चुअली एक व्हीकल टूरिस्ट व्हीकल ड्राइवर हूँ, और ये मुझे हमेशा ऐसा हो जाता है कि कभी सुनने के लिए जाता हूँ तो पैसेंजर सुनने नहीं देते हैं।
सबसे पहले तो राकेश जी, आपको ये बतलाई देते हैं कि ये प्रोग्राम इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है हमारे newsonair.gov.in वेबसाइट है, आपको मिल जाएगा जब आप जाएंगे newsonair.gov.in, या न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल भी एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाएंगे और प्रेस करेंगे तो आपको मार्केट मंत्रा के सारे पिछले और बाकी जो हमारे मेन बुलेटिन हैं या जो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, स्पॉटलाइट है, सुर्खियों में है, वो सब रिकॉर्डिंग्स आपको वहां मिल जाएंगी। तो पहले तो आपको ये क्लियर कर दें। जी
जो आपका सवाल था कि IPEF यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड से आपका अप्रूवल आ गया है और आपके अभी खाते में शेयर नहीं पहुंचे हैं, यानी कि वो डीमैट अकाउंट में नहीं पहुंचा है, देखिए इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो ये होता है कि जो शेयर IPEF में जमा हो गया है, अब वो वापस जो है उनको कंपनी को मिले और फिर कंपनी उसके आधार पर उसको जारी करे, वो थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए ये आपको विलंब हो सकता है, लेकिन अगर आपका अप्रूवल आ गया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ऑल राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, सवाल पूछिए। सॉरी, वी हैव अमित जी फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी जी, अमित जी।
नमस्कार सर जी, तो लालिमा अनिजा डेंग मैडम, आपको हिंदी बोलते सुनने बड़ा अच्छा लगता है।
धन्यवाद जी।
मेरा प्रश्न ये है सर, सिन्हा सर से, सर जैसे कि इस साल अप्रत्याशित उछाल आई है सिल्वर के प्राइस पे, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ सर कि सिल्वर की जो कंज्यूम कहाँ होता है, जैसे ज्वेलरी में है, एक इंडस्ट्रियल है और एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से ETF के हिसाब से है, बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न मैं ये है कि इंडस्ट्रियल यूज्ड सिल्वर का कौन से इंडस्ट्रीज में ज्यादातर होता है, और एकदम क्या इस वजह इसी साल ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन होने लगी, आखिर वजह क्या है सर? और दूसरा सर, कोल माइन का जो कोल सेतु है ये क्या है सर? धन्यवाद सर।
अमित जी, चूंकि पहले प्रश्न का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि उसका कहां कहां इस्तेमाल होता है, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में काफी बड़े पैमाने पर सिल्वर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन बढ़ गया है। दरअसल क्या हुआ है कि सोने के भाव जब बढ़े तो लोगों ने एक विकल्प के तौर पर चांदी में भी निवेश करना शुरू किया और उसकी वजह से भी उसके दाम बढ़े। तो एक तरफ तो उसका इस्तेमाल है सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा, और दूसरी तरफ यह है कि लोगों ने निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर उसे सोचना शुरू किया। तो इन दोनों कारणों से आपके चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और आपने देखा होगा कि 2 लाख रुपए प्रति किलो के दर के ऊपर पहुंच गई थी कल वायदा सौदे में और थोड़ा नीचे आया है। आपका जो दूसरा प्रश्न था कोल सेतु, दरअसल एक कोयला जो है हमारे यहां जब आवंटित किया जाता है तो उसमें पहले जो शर्त होती थी कि जिस काम के लिए आप कोयला ले रहे हैं वहां पर आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये थोड़ी सहूलियत दी गई है कि आप अपने इस्तेमाल के लिए तो करें ही, और अगर आपके पास है तो आप उसका अतिरिक्त जो है वो निर्यात भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें व्यापारी या व्यापारियों को शामिल नहीं किया गया। अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, ट्रेडर्स जो है वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है।
और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
नमस्ते सर, FII का पैसा कितना एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होता है, और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब ये बहुत सारा पैसा निकल रहा है तो क्या हमें इससे नुकसान होगा, क्योंकि FII हम लोग और हमारे यहाँ FII जो इन्वेस्टर्स हैं, दीज आर फ्रॉम विच कंट्री, आर दे फ्रॉम रशिया और चाइना, और दे आर नॉट फ्रॉम रशिया एंड चाइना, बिकॉज रशिया एंड चाइना से रशिया से हम दोस्ती कर रहे हैं, पर हमारे जो जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं वो सारे यूरोपियंस और अमेरिकन, ऐसा कुछ लगता है। सो व्हाट आर द व्हाई आर वी यू नो नॉट बीइंग टैली विद दीज कंट्रीज, व्हाई आर वी बीइंग टैली विद द अदर साइड।
शंकर जी, जो विदेशी जो संस्थागत निवेशक है जिनके लिए आपने FII वर्ड यूज किया, मैं उसके लिए FPI वर्ड यूज करूंगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। इस पैसे को हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी का मतलब यह है कि आप जैसे कहते हैं ना कि जलता हुआ कोयला अगर आपको हाथ पर रखने को कहा जाए तो आप सेकंड भर भी नहीं रख पाएंगे, यानी कि वो जितनी जल्दी आपके पास आता है उतनी जल्दी आप उसे फेंक देते हैं। उसी तरीके से ये वो जो निवेशक है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। ये शेयर बाजार में आते हैं, सुबह में लगाएंगे, दोपहर में निकल जाएंगे, हो सकता है अभी लगाएंगे 5 मिनट के बाद निकल जाएंगे, उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है। तो अब इसका नुकसान क्या है कि अब आपका इसका नुकसान यह है कि अगर आपको दिखता है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा तादाद में विदेशी संस्थागत निवेशक आ गए तो हमारा जो रुपया है उसको एक फायदा मिलेगा, थोड़े समय के लिए फायदा मिलता है, लेकिन दिक्कत तभी होती है कि जब भारी तादाद में वो निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी आप स्थिति देखेंगे कि हमारे जो FPI हैं वो पैसा खूब निकाले हैं, और उसका असर क्या हुआ है कि डॉलर की मांग जो है वो बढ़ जाती है, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है जाहिर सी बात है आपके रुपए पर असर पड़ता है। दूसरा जो आपने पूछा कि ये कहां से हैं, तो देखिए चीन और रूस की बात नहीं है, ये ज्यादातर जो है आपके मॉरिशस से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, हांगकांग से आते हैं, इन जगहों से जो है वो हमारे जो FPI हैं वो वहां से ज्यादा आते हैं, और बाकी ऑफकोर्स अमेरिका और दूसरे देशों से भी आते ही हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर नाउ जॉइंड बाय मिस्टर एन आर प्रसाद, अ वेरी रेगुलर लिस्नर ऑफ आवर्स, एंड ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम बेंगलुरु। वेलकम मिस्टर प्रसाद, एंड प्लीज आस्क अ क्वेश्चन।
हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एन आर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। हेलो लालिमा जी, हेलो अमरीश,
हेलो हेलो
सिन्हा। देयर आर टू क्वेश्चंस मिस्टर सिन्हा। इनफैक्ट यू ऑलमोस्ट रिप्लाइड हाफ ऑफ दैट आंसर व्हिच आई वांटेड टू आंसर। See, finance minister has announced 100% of the FDI. Now, which sector would affect, especially in Q4 of 25-26? This is what actually I want to know. My second question is, rupee has reached its rock bottom of 90.37. Now, is it a strategy by India or some social media saying that India is tackling the current scenario against the dollar? But even then, I want to see which sector would hit badly because of this. Thank you. These are my 2 questions, sir.
The first question, you talk about the 100% FDI. I believe you are talking about the bill which was approved by Union Cabinet on Friday. Of course, it has not been officially announced because the bill is to be tabled in the parliament, and that bill is for the insurance sector. At present, the sectoral limit in insurance is 74%. Now it is going to 100%. So to answer your question, that which is the sector, of course, the insurance sector, whether we talk about life insurance or non-life insurance, both will be impacted, or rather, I would say, benefited by this particular decision. Talking about the second question, that whether it is an intentional one or any other motive behind that, I mean, whatsoever social media says, we are not going by that. But as a matter of policy, we have a policy of what we call as a market determined pricing policy. That means it is the market which decides that what should be the level, or whether what kind of demand we have or what kind of supply we have. Unfortunately, since we are importing large quantity of gold as well as of course the crude oil and various other products, so of course the dollar outgo is very high. But at the same time, when the export is low, your FDI is okay, not very much, but it is at a certain level, and the remittance level is almost at the same level. Considering all those things, the cold money, which I was just talking about, the hot money, which is the FPI money, but when we talk about the FDI and the remittance and the export proceed, they are the cold money. And if you have higher amount of cold money, that is going to give more comfort to the rupee. At this moment, the cold money is slightly on a lower side, and since FPI outflow is very high, so combination of these two are affecting the rupee.
All right, that's well explained. We move on and take a look at the U.S. markets now. Major U.S. indices edged lower yesterday, dragged by technology-related shares as investors were wary of artificial intelligence bets. The rising U.S. Treasury yields also added pressure after some policymakers spoke out against easing monetary policy. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index dropped 1.7%, the S&P 500 slipped over 1%, and the Dow Jones Industrial Average dipped 0.5%. For the week, Nasdaq declined more than 1.6%, while the S&P 500 fell over 0.6%. However, the Dow managed to secure a weekly gain of over 1%. Before we move ahead, we have Yogesh calling us from Delhi. Ji Yogesh ji, sawal puche apna.
Ji, aap sabhi ko namaskar. Mera sawal hai ki kabhi kabhi dekhne mein aata hai ki government bhi banks se, world bank se, institutions se loan uthati hai, aur kabhi kabhi ya aksar aisa dekha gaya hai ki wo loan ka tenure itna lamba hota hai aur wo itni currency chhap deti hai dobara se ki wo inflation ki wajah se paise ki value bhi ghat jati hai, loan apne aap kam ho jata hai. To ye kya dheere dheere karke hum log hyper inflation ki taraf badh rahe hain, और काफी देशों में भी देखी गई हाइपर इन्फ्लेशन आई है, तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं और क्या खतरे हो सकते हैं?
योगेश जी, दो बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा. जब हम सरकार की उधारी की बात करते हैं, तो एक तरफ तो जो उनका जो सालाना बजट में ऐलान होता है वो बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से लेते हैं, और उनका 5 साल 10 साल का टेन्योर होता है, उसमें मैक्सिमम टेन्योर अब 40 साल का है. तो वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जिसको जीसेक कहते हैं, और वो आपके जो साल के खर्चे होते हैं उससे निपटने के लिए है. अगर मैं बजट के दस्तावेज की बात करूं, तो लगभग 24% जो हमारा बजट है उसकी जरूरत जो है वो उधारी से पूरी की जाती है. क्या इस उधारी को कम करने के लिए या उधारी चुकाने के लिए पैसा छापने पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो है आपका 40 साल में एक निश्चित दर से उसको वापस किया जाता रहा, और कई बार होता है कि जब आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी या नकदी उपलब्ध होती है तो आप उसको उस साल में उसको जिसको एक तरीके से कहते हैं प्री पेमेंट भी कर देते हैं. अब जो दूसरा आपका प्रश्न है कि संस्थागत जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक हो या जीका हो, जीका जापान की है, जिसमें अपना मेट्रो में हमारे यहां देखेंगे कि ज्यादातर पैसा जीका का लगा हुआ है, ये जो है बहुत लंबे टेन्योर का होता है और इसमें ब्याज दर काफी कम होती है. तो ऐसा नहीं है कि इसको चुकाने के लिए आपको नोट छापने की जरूरत होती है. ये याद रखिए कि हम लोग अब ऐसे दौर में हैं जहां पर हम लोग अपने घाटे का मौद्रीकरण नहीं करते हैं, बल्कि घाटे को सीमित करने के लिए हमारा कानून जो है, जिसको हम लोग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है, उसके तहत करते हैं.
और दिल्ली से हमारे चिरपरिचित श्रोता आरएस दहिया जी लाइन पे हैं. दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
सर नमस्कार, मेरा क्वेश्चन सर है अभी जस्ट आंसर्ड द क्वेश्चन ऑन दैट ओनली दैट वी हैव सेव्ड लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डॉलर फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड बाइंग द ऑयल फ्रॉम रशिया. Mm-hmm. And now the main reason being given that the depreciation of rupee against dollar is the you see, foreign institutional investors, FIIs, and portfolio investors. My question is that when will these FIIs will come, and if they don't come, where will we reach the devaluation of rupee against the dollar?
Bhaiya sahab, first of all, we should not call devaluation. It is a depreciation, because when we say devaluation, that means the government or the monetary authority is reducing the value, and which happened for the last time in India in 1991. Since independence, there have been just four occasions when we have gone for devaluation. So at this moment, we are talking about the depreciation, where the rupee has been depreciated against the US dollar, and now it is at around 90.2, 90.3. Now, your question is that when these foreign investors will come. Of course, the foreign investors are coming and going. Since we do not have a system of giving them a kind of lock-in that, okay, you have come, now you will have to stay for 2 weeks or 3 weeks or 1 month or 2 months. Since there is no lock-in, that is why we call it as the hot money. And that is a system which every country follows. It is not just India which is following the system. So foreign investors are there. They are just looking for the opportunity. Whenever there is opportunity, they will invest. And when there is opportunity to book the profit, they will go up. And at this moment, they are finding that, there is opportunity to book the profit, because the domestic investors are putting large amount of money. So considering all those things, it is not correct to say that they are waiting. They are coming and they are going out.
All right. Well, three members of the U.S. House of Representatives have introduced a resolution to overturn President Donald Trump's national emergency declaration that enabled tariffs of up to 50% on imports from India. The resolution called the measures illegal and harmful to American workers, consumers, and bilateral ties. Lawmakers Deborah Ross, Mark Vasey, and Raja Krishnamurthy said the duties imposed under emergency powers in August are illegal, damage U.S.-India ties, and raise costs for American consumers. The resolution aims to cancel the additional 25% secondary tariffs placed on Indian goods on the 27th of August, which came on top of an earlier 25% levy. What do you make of this, Shishir?
It's, of course, a very positive development, but I'm not sure that this resolution is going to be approved. So it's just like that we have seen a number of private members' bill in our Lok Sabha and Rajya Sabha, and those private member bills are very important, sometimes very interesting one, but hardly of them get converted into a law. So whether this particular resolution gets the maximum number of approval, I'm not very sure about that.
So good intentions must result in good outcomes,
yes,
ultimately. All right. Well, the Central Board of Direct Taxes, CBDT, has urged taxpayers to update their income tax returns, ITR, and withdraw any wrongful claims under the Nudge campaign. Under the campaign, SMSs and email advisories are being issued from the 12th of this month to such taxpayers on their registered mobile numbers and emails. CBDT has also advised taxpayers to ensure that correct mobile and email IDs are mentioned in their filings with the department so that they do not miss out on any communication. The second non-intrusive usage of data to guide and enable Nudge, that is, campaign was launched by CBDT last month as a taxpayer-friendly measure to strengthen voluntary compliance. Additional information on deduction provisions and filing of updated returns is available at www.incometax.gov.in.
और चलते हैं अगली खबर की ओर. संचार मंत्रालय और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने कल नई दिल्ली में डाक कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में प्रमाणित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए. चयनित डाक कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को सेवाएं प्रदान करेंगे और म्यूचुअल फंड लेन देन को आसान बनाएंगे. मंत्रालय ने इसे वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और देश भर में निवेश उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया. मंत्रालय ने कहा कि यह पहल ग्रामीण, अर्धशहरी और कम सेवा वाले क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के उत्प्रेरक के रूप में भारत पोस्ट के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाएगी। शशि जी आप क्या कहेंगे, एक बहुत ही अच्छी और नई तरह की पहल की गई है।
बिल्कुल, देखिए डाकघर के साथ हमारा संबंध जो है वो काफी अलग तरीके से होता है, क्योंकि कई इलाकों में डाकघर जो है जो डाकपाल होते हैं, जो डाकिये होते हैं, वो उनसे एक तरीके से आपका पारिवारिक संबंध बन जाता है। छोटे शहरों में, कस्बों में तो बहुत ज्यादा है, और वो लोग अगर आपको निवेश में मदद करें, वो भी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि क्या है कि जो लोग शेयर बाजार के सीधे जोखिम से बचना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है, और कोई आपको आकर के एक प्रमाणिक जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको निवेश करने में मदद करे, वो एक काफी अच्छी पहल है, और वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता दोनों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल।
एंड आई थिंक वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी देयर, एंड वी हैव
मोर देन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज, एंड आउट ऑफ 1.5 लाख 1.3 लाख इन द रूरल एरिया।
Amazing.
So that's a good network you have. I mean, nowhere in the world you have this kind of network.
And we should capitalize on it.
Yes, certainly.
All right, let's talk about oil now. Global crude oil prices closed lower yesterday, registering over 4% weekly decline. Factors including supply glut and potential Russia-Ukraine peace deal outweighed worries about impact from the U.S. seizure of an oil tanker near Venezuela. On Friday, Brent crude futures dipped over 0.2% to settle at $61.12 per barrel, while WTI crude fell almost 0.3% to end at $57.44 per barrel. For the week, Brent crude dropped 4.1%, while WTI crude shed 4.4%.
और शिशु जी, अगर हम शेयर बाजार की बात करें और साप्ताहिक जो भी हमारा अभी देखा हमने बाजार का उतार चढ़ाव, तो क्या कारण है जो अभी बाजार को उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं? हमारी जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है उसका लोगों को इंतजार है, या रुपए की जो कीमत में कमी आ रही है उसका रिफ्लेक्शन हमें शेयर बाजार पर दिखाई देता है?
देखिए दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कमी की तो उसके अगले दिन भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आई, अमेरिकी शेयर बाजारों में भी तेजी थी, लेकिन उसके अगले ही दिन फिर भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ गई। एक बड़ी वजह क्या है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर के अभी भी निश्चिंता नहीं है। दूसरी तरफ आपने एक नोटिस किया होगा कि मेक्सिको ने भी भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो इसकी वजह से हालांकि मेक्सिको के साथ हमारा कुल व्यापार अगर देखें तो वो 1-3% की, अगर अमेरिका अगर हमारे व्यापार साझेदार के हिसाब से सोचे उसके मुकाबले मेक्सिको एक छोटा सा है। लेकिन क्या होता है ना कि एक सांकेतिक है, एक आपका असर जो है वो भावनाओं पर पड़ता है, जो एक माहौल होता है उसके ऊपर पड़ता है। तो बाजार में थोड़ी सी चिंता और थोड़ी सी घबराहट इस बात को लेकर के है कि अगर व्यापार समझौते नहीं होते हैं या हमारे खिलाफ इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं तो हमारी जो विनिर्माण की गतिविधियां, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, वो प्रभावित होंगी और उसका असर जो है वो आर्थिक विकास पर देखने को मिलेगा।
गोइंग अ लिटिल बैकवर्ड शिशिर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द नज कैंपेन व्हिच आई जस्ट रेड अ व्हाइल अगो?
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन एट दिस मोमेंट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द लास्ट ईयर ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इज December 31st, 2025, and for FY22 you have the last date to file updated return by March 31st, 2026. So the income tax department, based on certain data, have found that the people have taken wrong claim. Now that's a last chance to avoid any kind of penalty, and that is why this nudge campaign is
there. लेकिन शशि जी, wrong campaign का क्या मतलब हुआ? वो तो जो जिसने अपना filing की है तो वो तो income tax department को ही तय करना है।
उसी के आधार पे ही तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि भाई साहब आप अपने रिटर्न को सुधार लीजिए। रॉन्ग डिडक्शन की बात हो रही है, क्लेम की बात हो रही है, आपने लिया क्लेम, अब सुधार लीजिए
जी। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices closed weak with losses of over 0.5%. Major U.S. stock indices display mixed performance this week. And global crude oil prices log weekly decline of more than 4%. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, my co-anchor, Amrish Mishra, and Amrish Saxena ji, and Shishir Sinha ji, our expert for the day. To sign off, so namaskar.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Monday.